समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल जगत पर भी रहेगी हमारी नजर और उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को भी हम करेंगे याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिवस। परिक्रमा के आज के इस अंक के साथ मैं हूं मुदिता और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट नरेश मागू। नरेश, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार मुदिता, गुड आफ्टरनून लिसनर्स। यू ट्यून इन टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM। फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, वी हैव आवर डिस्कशन सेगमेंट्स, डेटलाइन इंडिया रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दिस ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स, बट फर्स्ट अप द न्यूज हेडलाइंस।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विश्व शांति के लिए दुनिया भारत की ओर देख रही है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 2550वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया।
इलेक्शनियरिंग फॉर द सेकेंड फेज ऑफ लोकसभा पोल्स इंटेंसिफाइज, कैंपेनिंग टू एंड ऑन वेंसडे।
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का जेआरएफ और पीएचडी में प्रवेश के लिए यूजीसी नेट परीक्षा का पंजीकरण शुरू।
एंड यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स अप्रूव्स $95 बिलियन लेजिस्लेटिव पैकेज सिक्योरिटी असिस्टेंस फॉर यूक्रेन, इसराइल एंड ताइवान। एंड नाउ टाइम फॉर आवर सेगमेंट डेटलाइन इंडिया, in which we take a look at the developments at the national or global level. Today, we will talk about Mahavir Jayanti. Mudita, Mahavir Jayanti has a very, very special place in today's world, especially because there is so much of, you know, conflict in the world. Mm-hmm. And what he said, you know, was Lord Mahavir said that live and let live.
जी,
एंड आई थिंक दैट इज द मंत्र दैट वन शुड फॉलो इन यू नो इन टुडेज कंडीशन, इन टुडेज सर्कमस्टेंसेज, बिकॉज यू नो इफ वी ऑल गो आफ्टर द जगुलर ऑफ द अदर पर्सन, देर विल बी नो वन लेफ्ट। सो लिव एंड लेट लिव शुड बी द मंत्र, एंड इट्स सच अ सिग्निफिकेंट रिलीजियस फेस्टिवल एंड स्पेशली फॉर जैन्स, मार्किंग द बर्थ ऑफ लॉर्ड महावीर, एंड ही वॉज द लास्ट तीर्थंकर एंड फाउंडर ऑफ जैनिज्म। He was born as Vardhaman Mahavir in the 6th century BCE in Vaishali, an ancient kingdom in present-day Bihar in India. Mahavir's teachings emphasized non-violence, truthfulness, non-possessiveness and self-discipline. On Mahavir Jayanti, devotees visit Jain temples to participate in special ceremonies and pujas, such as the ritual bathing or abhishek of the idol of Lord Mahavir.
भगवान महावीर की जयंती हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाई जाती है। मान्यताओं के अनुसार इसी दिन महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ये दिन काफी शुभ माना जाता है और जैन धर्म के लोग इसे बड़े उत्साह से मनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 12 साल की कठोर तपस्या के बाद भगवान महावीर ने अपनी सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। इस तपस्या के बाद ही उन्होंने दिगम्बर स्वरूप को स्वीकार किया था। महावीर स्वामी के जन्मदिन की धूम जैन मंदिरों में दिखाई देती है। जगह जगह मंदिरों को विशेष रूप से सजाया जाता है। तो श्रोताओं, देर किस बात की, जैन धर्म के सबसे प्रमुख पर्व के मौके पर अपने दोस्तों और परिजनों को महावीर जयंती के आकर्षक शुभकामना संदेश भेजिए आप भी।
दिस डे ऑल्सो नोन एज महावीर जन्म कल्याणक अंडरस्कोर्स द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म, फोकसिंग ऑन धर्म, focusing on compassion, self-discipline and spiritual growth. It is also a time for Jains to engage in acts of charity, reinforcing the values that Lord Mahavir advocated throughout his life.
और नरेश, जैसे आप बात कर रहे थे तो महावीर का अहिंसा का सिद्धांत तो वाकई दुनिया को आज के समय में अपनाना चाहिए। महावीर स्वामी के 5 सिद्धांतों के बारे में बताया जाता है। उसमें से पहला है कि जिस प्रकार धागे से बंधी सुई खो जाने से सुरक्षित है, उसी तरह स्व अध्ययन में लगा व्यक्ति खो नहीं सकता है। और जो सच को जानने में मदद कर सके, आपके मन को नियंत्रित कर सके और आत्मा को शुद्ध कर सके, उसे ही ज्ञान कहते हैं। साथ ही वो हर जीवित प्राणी के प्रति दया रखने और घृणा को खत्म करने पर जोर देते हैं। उनका मानना है कि सभी मनुष्य अपने स्वयं के दोष की वजह से दुखी होते हैं और वे खुद अपनी गलती सुधार कर प्रसन्न हो सकते हैं। एक बात जो शायद और धर्मों में भी कही जाती है, खासकर हिंदू धर्म में भी, कि आत्मा अकेले आती है, अकेले चली जाती है, न कोई उसका साथ देता है, न कोई उसका मित्र बनता है।
मुदिता, सच पावरफुल वर्ड्स ऑफ विजडम।
जी बिल्कुल।
एंड ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ महावीर जयंती, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्युरेटेड द 2550th भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव इन न्यू दिल्ली। And Mudita, as we celebrate Mahavir Jayanti, let's remember to be kind, gentle and mindful of our actions, and let's wish a very, very happy Mahavir Jayanti to all our listeners.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या है खास।
The great banyan tree is a living legend of the Acharya Jagdish Chandra Bose Indian Botanical Garden. The garden is under the supervision of the Botanical Survey of India, located in Howrah district near Kolkata. The tree found entry in the Guinness Book of World Records for its massive canopy. Here is more from our correspondent Sushmita.
Despite the garden having a large collection of exotic plants, the great banyan tree draws the maximum number of visitors. It is over 270 years old and the present area occupied by the tree is about 18,918 square meters. The crown of the tree has a circumference of 486 meters and the highest branch rises to 24.5 meters. As the branches grow longer, they are supported by a series of pillar-like prop roots, the total number of which is over 4,000. The great banyan tree appears more like a miniature forest than an individual tree. The tree is found all over the country and is the national tree of India. There are no documents as to the time of its planting. However, it finds mention in the travel books of the 19th century when Colonel Robert Kidd, an army officer of the East India Company, founded this garden in 1787. The great banyan tree survived the Calcutta cyclone of 1864 and the subsequent cyclone of 1867, during which some of its main branches got damaged, exposing it to fungus attack. In 1925, its main trunk, measuring 16 meters in girth, had to be removed as it was infected by wood-rotting fungus. In spite of the absence of the main trunk, the tree continues to maintain its vigor and vitality. Sushmita Mundol, Akashvani, Kolkata.
IIT Madras has launched India's first medical device calibration facility on wheels. This has been developed by IIT Madras under its Anaivarakkam IITM, which means IITM for All initiative. Let's hear more in this report.
Highlighting the importance of this initiative, Professor V. Kamakoti, Director IIT Madras, said, "Proper diagnosis and treatment are extremely important. For that, the medical devices need to be calibrated accurately and frequently. With escalating costs for calibration, this effort not only reduces the cost of calibration, but also the transportation cost and time required. This is a progressive step towards affordable, scalable, quality healthcare for all. Maintenance and quality assurance of life-saving medical devices are of paramount importance for healthcare delivery. Calibration is crucial as it ensures the accuracy of medical instruments for precise disease diagnosis and effectiveness. This facility is first of its kind in India and is geared towards providing an affordable quality calibration facility and enabling accurate disease diagnosis and treatment. This mobile facility will ensure pervasive quality healthcare irrespective of geographical locations across the country. This will help to test and maintain medical devices that are used in wide range of hospitals, including those in villages at their doorsteps. This initiative boosts the United Nations Sustainable Development Goal 3, which calls for health and well-being for all. The infrastructure available in this mobile unit include state-of-the-art equipment to test the safety of medical devices and their functionalities as per international standards. This is Blessy from Akashvani, Chennai.
The bell metal industry of Sarthebadi in Barpeta district of Assam is famous for the traditional artisan-based industry developed during the 7th century. Recently, this bell metal industrial cluster received a GI tag. More from our correspondent.
The bell metal industry of Sarthebadi is one of the traditional artisan-based industry of Assam, famous for its artistic bell metal products. Historical records indicate that during 7th century AD, King of Kamrupa, Kumar Bhaskar Barmano presented articles made from bell metal from Sarthebadi as a gesture of goodwill to King Harshavardhana of Kannauj. Apart from the utensils and utility items, the artisans of the cluster also produces different types of tals used in religious ceremonies and as musical instruments in folk dances of Assam. Idols of different gods and goddesses, besides these items, decorative items like flower vase, lamp stands, decorative clocks are also made. The bell metal craftsmen are called kohar or oza. The handicraft items produced by the artisans of Sarthebadi are sold not only in the state of Assam but also in the entire northeastern states, including foreign countries. Recently, this bell metal industry received the GI tag. Aminul Hosseddar, Akashvani News, Guwahati.
In view of the upcoming Lok Sabha election, we present you a capsule based on state profile, giving details of the number of phases, dates of polling, number of seats and other relevant facts by our correspondent. First, let's go to the picturesque Wayanad constituency in North Kerala, bordering Tamil Nadu and Karnataka, which is famous for its rich biodiversity and tea and coffee plantations. It has 7 assembly constituencies, Manantavadi, Sultan Battery, Kalpetta, Tiruvampadi, Eranad, Nirambur and Vandur. Our Kochi correspondent looks at the constituency, which is the focal point of national interest as the state goes to the poll on the 26th of this month.
The predominantly rural constituency of Wayanad shot into national prominence with the candidacy of Congress leader Rahul Gandhi in 2019. Rahul is seeking support from the electorate for his second term this time, but faces far more formidable candidates. The LDF has fielded CPI leader Annie Raja and NDA, the BJP state president K. Surendran, to take on the Congress candidate. The candidates are addressing local issues such as agricultural distress, human-animal conflict, lack of proper medical and other infrastructure facilities, and the Bandipur night traffic ban, among other things. The Congress is focusing on the NDA government's alleged failures, the CPI on the region's developmental challenges, while the BJP campaign highlights the targeted welfare schemes introduced by the NDA government at the center. The constituency has 14,62,423 voters, comprising 7,31,354 women, 7,21,054 men, and 15 transgenders. Of these, over 1,04,600 are first-time voters. Rajmohan, Akashwani News, Kochi.
लोक सभा चुनावों के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों की प्रोफाइल श्रृंखला में आज हम महाराष्ट्र के नांदेड़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। नांदेड़ संसदीय क्षेत्र राजनीतिक विरासत का केंद्र रहा है। नांदेड़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, भोकर, नांदेड़, उत्तर नांदेड़, दक्षिण नायगांव, डेगलूर और मुखेद।
कांग्रेस ने पूर्व विधायक वसंतराव चव्हाण को मैदान में उतारा है, जबकि वंचित बहुजन आघाड़ी ने छात्र आंदोलन के युवा उम्मीदवार अविनाश घोषिकर को जिम्मेदारी सौंपी है। बीजेपी ने मौजूदा सांसद प्रताप पाटिल चिखलीकर पर अपना भरोसा जताया है। नांदेड़ संसदीय क्षेत्र से 23 उम्मीदवार अपनी चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं। पिछले 5 चुनाव में से 4 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की है, जबकि पिछले चुनाव में बीजेपी ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। निर्वाचन क्षेत्र में कुल 18,51,843 मतदाता है, जबकि 2,062 मतदान केंद्र तैयार किए गए हैं। इनमें से 39 संवेदनशील मतदान केंद्र है। नांदेड़ लोकसभा के लिए दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। समरजीत ठाकुर, आकाशवाणी समाचार, छत्रपति संभाजीनगर।
Now we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall the events that happened on this day.
In today's episode, we remember freedom fighter Tarawati,
who was born on the 21st of April 1908 in Bathinda, Punjab. She actively participated in the Swadeshi movement, non-cooperation movement and Salt Satyagraha.
Taravati's father Murari Lal was deeply influenced by Arya Samaj. He ensured the education of Taravati and sent her to Lahore for school education. Even after her marriage, she remained committed to the cause of independence and joined the Indian National Congress along with her husband.
She actively promoted the use of khadi. In 1930, she took part in a satyagraha in Muzaffarnagar against the sale of liquor. Taravati's three-month-old daughter was incarcerated along with her for 3 months. With Vande Mataram and Jai Hind on her lips, Taravati spent 3 months in prison weaving khadi and following the path of Mahatma Gandhi.
She was also imprisoned during the Quit India movement and sent to jail in Varanasi. Talking exclusively to All India Radio, Taravati's son, Dr. Praveen Kumar Gupta, recalled her nationalistic zeal.
A firm follower of Arya Samaj, Ammaji devoted her life to social service. She started a free vocational training school for poor girls and an old age home for senior citizens. She strongly believed in Vinoba Bhave's Bhudan movement and worked for it.
Taravati died in 2007 at her residence in Muzaffarnagar, Uttar Pradesh. EIR salutes the great daughter of India.
We also remember Assamese freedom fighter Mangovind Chakravarti, who was born on the 21st of April 1893 in a remote village of Satrasal in Dhubri district of Assam. Chakravarti left his law studies and joined the non-cooperation movement on the clarion call of Mahatma Gandhi in 1921. Mangovind joined the freedom movement as a student activist. After completing his graduation in Calcutta in 1919, he returned to Assam and worked in his village for the upliftment of the poor and women on the issues of education and health. After joining the non-cooperation movement in 1921, Mangovind organized burning of foreign clothes in the streets of Calcutta and started wearing khadi, which he continued to do throughout his life. He was jailed many times for his active participation in the freedom movement. After independence, Mangovind worked for the upliftment of the backward areas. By his relentless efforts, he established 9 schools, 4 government dispensaries and 2 post offices in Dhubri district. Mangovind died on the 28th of April 1973 in Dhubri. The then President of India, Fakhruddin Ali Ahmed, was among the first ones who sent a telegram of condolence to the bereaved Chakravarti family. We salute the great freedom fighter. We remember freedom fighter Ganpat Rai Pandey, who took part in the First War of Indian Independence in 1857. Born on the 17th of January 1809, in Ranchi, Jharkhand, Ganpat Rai was the Diwan of the Maharaja of Chota Nagpur and took an active part in the 1857 uprising.
He was captured by the British forces in March 1858. His property was confiscated and he was executed by hanging on the 21st of April 1858 in Ranchi. We salute the great martyr.
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला चल रहा है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था और ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता नाइट राइडर्स ने 14वें ओवर में 5 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। एक अन्य मुकाबले में आज शाम चंडीगढ़ में पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस की टीमें आमने सामने होंगी। दक्षिण कोरिया में विश्व एशिया ओशियानिया ओलंपिक और पैरालंपिक क्वालिफिकेशन मुकाबले में नौकायन में बलराज पवार ने तीसरा स्थान प्राप्त कर पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का पहला कोटा हासिल कर लिया है। बलराज पवार भारतीय सेना के कर्मी हैं। उन्होंने 2000 मीटर की रेस 7:01.27 में पूरी की।
इन चेस इंडिया 17-year-old सेंसेशन डी गुकेश became the sole leader of the FIDE candidates 2024 ahead of the final round in Toronto, Canada today. Operating with white pieces, Gokesh defeated Ali Raza Feroza of Iran in the 13th and penultimate round of the open section after a series of accurate moves. Gokesh at 8.5 points will take on Hikaru Nakamura of the USA with black pieces in the last round tomorrow morning.
और अब समय है उन व्यक्तित्वों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिवस। श्रोताओं, आज सबसे पहले हम याद कर रहे हैं मानव कंप्यूटर के नाम से मशहूर शकुंतला देवी की, वो जिनकी आज पुण्यतिथि है। बैंगलोर में 4 नवंबर 1929 को उनका जन्म हुआ था और 6 साल की उम्र में बिना किसी औपचारिक शिक्षा के उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में अपनी गणन क्षमता का प्रदर्शन किया। आर्थिक तंगी के कारण उन्हें 10 साल की उम्र में स्कूल में भर्ती किया जा सका, लेकिन स्कूल की फीस देने के लिए पैसे नहीं होने के कारण 3 महीने के अंदर ही उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा और बिना कोई डिग्री हासिल किए भी वो बड़ी से बड़ी संख्या की गणना चंद सेकंड में कर देती थी। नरेश, मुझे लगता है ये अपने आप में चमत्कार से कम नहीं है। बिल्कुल, और अपने समय के बड़े एडवांस और परिष्कृत कंप्यूटरों को भी उन्होंने मात दी। 1982 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उनका नाम दर्ज किया गया और बेहतरीन गणितज्ञ होने के साथ ही वो एक लेखिका, बांसुरी वादक और ज्योतिषी भी थी। 2013 में उनके 84वें जन्मदिन पर गूगल ने उन्हें डूडल बनाकर सम्मानित किया।
She, like you said, wrote a number of books in her later years, including novels as well as texts about mathematics, puzzles and astrology. Today we are also remembering Prince Rogers Nelson, who was an American singer, multi-instrumentalist, songwriter, record producer and actor. Recipient of numerous awards and nominations, he is widely regarded as one of the greatest musicians of his generation. He was known for his flamboyant, androgynous persona, his wide vocal range, which included a far-reaching falsetto and high-pitched screams, and his skill as a multi-instrumentalist, often preferring to play all or most of the instruments on his recordings. His music incorporated a wide variety of styles, including funk, R&B, rock, new wave, soul, synth-pop, pop, jazz, blues, and hip-hop. Prince produced his albums himself, pioneering the Minneapolis sound. I'm going to bring to you this beautiful number, Take Me With You, by him from the album Purple Rain. Today is the birth anniversary of Malayalam language poet, lyricist of Malayalam film songs and filmmaker P. Bhaskaran, born on this day in 1924. Bhaskaran penned more than 3,000 songs for about 250 films. He also directed 44 Malayalam feature films and 3 documentaries, produced 6 feature films and acted in several movies. For his overall contributions to Malayalam cinema, he was awarded the J.C. Daniel Award by the Government of Kerala. He was also a journalist and an All India Radio employee before becoming active in the film industry. He was well known for the simple use of language in his songs and poems.
आज सुप्रसिद्ध बांग्ला कवि शंख घोष की पुण्यतिथि है। उन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर की साहित्यिक विरासत को आगे बढ़ाने वाला रचनाकार माना जाता है और कवि होने के साथ ही वे गद्यकार और आलोचक भी थे। 60 से ज्यादा पुस्तकें रचने वाले शंख घोष को उनकी अनूठी दिन योजना, काल सापेक्ष कथ्य और कविता की अपनी विशिष्ट बुनावट के लिए जाना जाता है। उन्हें पद्म भूषण के साथ ही रविन्द्र पुरस्कार, सरस्वती सम्मान और ज्ञानपीठ जैसे सर्वोच्च लेखकीय सम्मानों से नवाजा गया। साहित्य अकादमी सम्मान तो उन्हें दो बार मिला, एक बार अनुवाद के लिए भी, और 2021 में आज ही के दिन कोविड महामारी से उनका देहांत हो गया।
Today we are also remembering Anthony Quinn on his birth anniversary. He was born in Mexico to a Mexican mother and the first generation Irish Mexican father. He was known for his portrayal of early passionate characters marked by a brutal and elemental virility in numerous critically acclaimed films both in Hollywood and abroad. His notable films include La Strada, The Guns of Navarone, Lawrence of Arabia, Guns for San Sebastian, The Shoes of the Fisherman, Across the 110th Street, The Message, Lion of the Desert, Jungle Fever, and so on and so forth. He, through his artistic endeavors and civil rights activism, remains a seminal figure of Latin American representation in the media of the United States. He received 2 Academy Award nominations in the Best Leading Actor category, along with 5 Golden Globe nominations and 2 BAFTA Award nominations.
और भारत में निशानेबाजी के पितामह माने जाने वाले बीकानेर के महाराजा डॉ. करणी सिंह की आज जयंती है। 1961 में अर्जुन पुरस्कार पाने वाले वे देश के पहले निशानेबाज बने, 17 बार नेशनल चैंपियन रहे और 5 बार ओलंपिक खेलों में भी हिस्सा लिया। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल जीते। निशानेबाजी से जुड़े यादगार लम्हों को उन्होंने फ्रॉम रोम टू मॉस्को नाम की एक किताब के रूप में प्रस्तुत किया।
Today is also the birthday of Srinivas Raghavan Venkataraghavan, informally known as Venkat. He is a great Indian cricketer, captained the Indian cricket team at the first 2 Cricket World Cups, and later became an umpire on the elite International Cricket Council Test panel. His Test career was one of the longest for any Indian player. He also played for Derbyshire in English County Cricket from 1973 to 1975. He was a qualified engineer and an alumnus of Chennai's famed College of Engineering, Quindi. He is a recipient of the civilian honour of Padma Shri. Venkataraghavan is also the second highest wicket taker in first-class cricket for India with 1,390 wickets in 341 matches. He was awarded the Arjun Award in 1971.
पहाड़ी प्रदेश उत्तराखंड ने देश को कई बहादुर सैनिक दिए हैं, जिनमें से एक थे उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के एक छोटे से गांव मंजीऊण के रहने वाले गबर सिंह नेगी। इन्हें पहले विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के खिलाफ लड़ने का मौका मिला। गबर सिंह नेगी ने जर्मनी के मुख्य मोर्चे में घुसकर दुश्मन को पीछे हटकर आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया था और इस युद्ध में ही बराबरी से लड़ते हुए सिर्फ 20 साल की उम्र में वे वीर गति को प्राप्त हुए। उनके गृहनगर चंबा में उन्हें हर साल उनकी जयंती पर गबर सिंह नेगी मेला के द्वारा याद किया जाता है।
We are also saying happy birthday to Jaydeep Mukherjee, a retired professional tennis player. He won the Indian National Junior Championship in 1959. He then began to play overseas and was the runner-up at the Wimbledon Boys Singles Tournament in 1960. For his accomplishments, Mukherjee was given the Arjun Award in 1966. Also paying tributes on his birth anniversary to Paul Lavon Davis, an American singer and songwriter best known for his radio hits and solo career that started worldwide in 1970. His career encompassed soul, country and pop. His most successful songs are 1977's I Go Crazy, a number 7 pop hit that once held the record for the longest chart run on the Billboard Hot 100, and 1982's 65 Love Affair, which is at number 6 in his highest charting single. Let's listen to the song I Go Crazy by Paul Davis.
Hello girl, it's been a while. Guess you'll be glad to know that I've learned how to laugh and smile. Getting over you was cold. They say old lovers can be good friends, but I never thought I'd be asleep.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे इजाजत लेने का, तो मुदिता और नरेश मागों को दीजिए अनुमति परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की।
नमस्कार।